आरवी कमरे में पहुंची तब शान अंशु के पास लेटा हुआ था। अंशु उसके सीने से लगकर सो रही थी और शान बड़े प्यार से उसके सर पर थपकी दे रहा था। आरवी की नज़र उस पर पड़ी। ठीक इसी वक्त दरवाजे की आवाज़ सुनकर शान ने भी उस तरफ निगाहें घुमाईं और दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकरा गईं। शान उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, जिसने आरवी के लबों पर बड़ी सी मुस्कान काबिज कर दी। वो कबर्ड की तरफ बढ़ गई और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वापस कमरे में आई। शान अब अंशु को अच्छे से सुलाकर अपनी साइड क्राउन से टिककर बैठा हुआ था। प्यार का एहसास होने के बाद वो पहली बार शान के साथ एक कमरे में और एक बेड पर सोने वाली थी। ये सोचकर ही उसके पेट में गुदगुदी होने लगी। ऐसा लगा मानो हजारों तितलियां एक साथ ही उसके पेट में उड़ रही हों। मन में अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए बेड पर अपनी साइड जाकर बैठ गई। वो जितना हो सके खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर फिर भी उसकी धड़कनें बढ़ गई थीं, जिन्हें वो संयमित करने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। शान की निगाहें उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं और वो उसके चेहरे के पल पल बदलते भावों को गहराई से नोटिस कर रहा था। कुछ देर वो खामोश सा उसको देखकर उसके भावों को समझने की कोशिश करने के बाद उसने गहरी निगाहों से उसको देखते हुए सवाल किया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? आरवी, जो अपने नए नए एहसासों में उलझी हुई थी, वो चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने हड़बड़ाहट में उसकी तरफ निगाहें घुमाते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। शान अब आंखों को छोटी छोटी करके उसको घूरने लगा, जैसे उसने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसकी निगाहों से आरवी सक पका गई और उससे नजरें चुराने लगी। फिर एकाएक उसको कुछ याद आया और उसने शान की तरफ पलटते हुए सवाल किया, आप घर आए थे तो बहुत गुस्से में लग रहे थे, कुछ हुआ है क्या? कोई परेशानी है? आरवी का सवाल सुनकर अब शान चौंक गया। उसको लगा नहीं था कि वो ये सवाल करेगी। उसके दिमाग में ये सवाल घूमने लगा कि जब वो आया था तब तो कोई हॉल में था ही नहीं, फिर आरवी को कैसे पता कि जब वो घर आया था तब वो गुस्से में था? आरवी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी और शान को समझ नहीं आया कि उसके इस सवाल का क्या जवाब दे। कुछ देर वो हैरान परेशान निगाहों से उसको देखता रहा, फिर उसने गंभीरता से जवाब दिया, प्रॉब्लम थी पर अब वो सॉल्व हो गई है, चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, शान ने लेटते हुए कहा। वो आरवी को और कोई सवाल करने का मौका नहीं देना चाहता था और आरवी भी समझ गई कि वो उसके सवाल से भाग रहा है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी जगह पर लेट गई। कुछ देर तक तो वो एक दूसरे के बारे में सोचते रहे, फिर दोनों ही नींद के आगोश में चले गए। रेहान का घर। रेहान घर पहुंचा। उसके थोड़ी देर बाद ही सृष्टि भी घर पहुंच गई। वो फ्रेश होकर आई तब रेहान किचन में डिनर बना रहा था। सृष्टि भी किचन में चली गई। रेहान ने उसे देखा तो सृष्टि ने क्यूट सी शक्ल बनाकर कहा, भाई भूख लगी है। उसके इतना कहने की देर थी कि रेहान ने एक प्लेट उसके तरफ बढ़ा दी, जिसमें पोटैटो टोस्ट रखे थे, जो देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहे थे। सृष्टि का चेहरा खिल उठा। उसने झट से प्लेट ले ली और उसे देखकर मुस्कुराकर बोली, लव यू भाई, ज्यादा मस्काबाजी नहीं, चल यहाँ से बाहर जा, मुझे काम करने दे और तू जाकर इसे खत्म कर, रेहान ने उसके गाल छूते हुए कहा। सृष्टि ने मुस्कुराकर हामी भर दी, फिर वहां से चली गई। रेहान वापस अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद दोनों भाई बहन डिनर के लिए बैठे हुए थे। रेहान खाना चबाते हुए सृष्टि को अपने और रश्मि के रिश्ते के बारे में बताने का तरीका सोच रहा था और सृष्टि तो मजे से खाना खाने में लगी थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने मन ही मन कुछ फैसला किया और स्पून प्लेट में रखकर सृष्टि की तरफ निगाहें घुमाकर बोला, सृष्टि मैंने तेरे लिए भाभी पसंद कर ली है। सृष्टि जी पानी पी रही थी। उसके कानों में जैसे ही ये बात गई उसके मुंह से सारा पानी फवारे की तरह बाहर आया और सीधे सामने बैठे रेहान के मुंह पर बरसा। ये सब इतना अचानक हुआ कि रेहान को कुछ समझने या खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिला और उसका पूरा चेहरा भीग गया। उसने पास रखे नैपकिन को उठाकर अपना चेहरा पोंछा। तब तक में सृष्टि ने आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से उसको देखते हुए पूछा, अभी आपने क्या कहा था? रेहान ने उसका सवाल सुनकर नजर उठाकर उसको देखा और बेबस चेहरा बनाते हुए बोला, मैंने अभी अभी नहाया था, दोबारा नहाना पड़ेगा तेरी वजह से। ओफो भाई, नहा लीजिएगा ना, पहले बताइए अभी अभी आपने क्या कहा था? सृष्टि को तो बस एक्साइटमेंट थी वो बात जानने की जो रेहान अब कह नहीं रहा था। रेहान ने उसका अभी कुछ देर पहले वाला रिएक्शन याद किया, फिर उसके हाथ में पकड़ा ग्लास देखते हुए बोला, अगर तुझे वो बात जाननी है तो पहले ये ग्लास खुद से दूर कर और चुपचाप अच्छी बच्ची की तरह शांति से मेरी बात सुन। सृष्टि ने निहायती शरीफ बनते हुए ओके भाई कहा, फिर एकदम किसी मासूम से बच्चे की तरह हाथ बांधे बैठकर उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगी। बेचारे रेहान ने गहरी सांस छोड़ी क्योंकि सृष्टि का क्या रिएक्शन होगा ये सोचकर उसको अब थोड़ी घबराहट होने लगी थी। गहरी सांस छोड़ते हुए उसने खुद को हिम्मत दी, फिर उसको देखकर शांति से बोला, कल मम्मी पापा आ रहे हैं यहाँ। उसके इतना कहते ही सृष्टि हैरानी से कुछ कहने को हुई कि रेहान ने तुरंत उसको रोकते हुए कहा, नहीं, अभी तो कुछ नहीं कहेगी। पहले मुझे मेरी बात पूरी करने दे। शांति से मेरी बात सुन, उसके बाद तुझे जो भी कहना होगा कह लियो। सृष्टि ने हामी भर दी और एक बार फिर चुप होकर बैठ गई। रेहान ने अब आगे कहना शुरू किया। कल दोपहर तक मम्मी पापा आ जाएंगे, उसके बाद शाम को हमें कहीं जाना है। अब तेरे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मम्मी पापा अचानक क्यों आ रहे हैं और हमें कल कहाँ जाना है, तो मैं तेरे इस सवाल का भी जवाब दे देता हूँ। बस तो शांति से मेरी बात सुनना, बीच में कुछ मत बोलना। रेहान ने कुछ सेकंड सृष्टि का इंतजार किया। सृष्टि ने हामी भर दी कि वो बीच में कुछ नहीं कहेगी। मुझे एक लड़की पसंद है, रेहान ने जैसे ही ये कहा सृष्टि की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो बोलने को हुई पर रेहान ने इनकार में सर हिला दिया। सृष्टि के लिए ये थोड़ा मुश्किल था, पर उसने अपनी क्यूरियोसिटी को अभी के लिए शांत कर लिया और फिर सीधी होकर बैठ गई। रेहान ने गहरी सांस छोड़ी और आगे बताना शुरू किया। भाभी की दोस्त है वो, पहली मुलाकात से ही मुझे पसंद थी, फिर धीरे धीरे कब मोहब्बत हो गई पता ही नहीं चला। तुझे पहले कुछ नहीं बताया उसके लिए सॉरी, पर छुपाने का कोई इरादा नहीं था मेरा, बस उसके तरफ से इनकार था, इसलिए पहले किसी को नहीं बताया। और आज अचानक इतना कुछ हो गया कि बताने का मौका ही नहीं मिला। उसके मम्मी पापा उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे, तब मैडम को एहसास हुआ कि वो तो मुझसे मोहब्बत करती है। और आज दोपहर में ही उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की और साथ में ये भी बताया कि आज उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं और वो इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मुझे जाकर उसके पेरेंट्स को मनाना पड़ा कि उसके लिए अभी लड़का ना देखें, एक मौका दे मुझे। उन्होंने मम्मी पापा से मिलने की बात कही तो मैंने उन्हें बुला लिया। कल हमें उसी के घर जाना है, मम्मी पापा आ रहे हैं ताकि कल वहां जाकर सब बात करने के बाद अगर हो सके तो रिश्ता पक्का कर दें। तुझे भी कल साथ में चलना है, इसलिए घर जल्दी आ जाना, बस इतना ही कहना था मुझे। अब तू जो बोलना चाहे बोल सकती है। रेहान अब चुप हो गया। वहीं बोलने की परमिशन मिलते ही सृष्टि ने बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं भाई, आपने अकेले मेरी भाभी भी पसंद कर ली, आप अपने रिश्ते की बात भी कराए, मम्मी पापा को भी बताकर यहाँ बुला लिया और मुझे आप सबसे देर से ये बात बता रहे हैं।
रेहान ने उसकी नाराजगी देखी तो बड़े प्यार से समझाते हुए बोला, तू ऑफिस में थी ना बच्चा, तो तुझे कैसे बताता, मौका मिलते ही बता तो दिया तुम्हें सब। बहाने मत बनाइए भाई, आपकी इस हरकत ने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं आपकी इकलौती बहन हूँ इसीलिए ये बात जानने का सबसे पहला हक मेरा था, पर आपने सबसे आखिर में मुझे बताया, आपकी इस गलती की सजा मिलेगी आपको। सृष्टि ने झूठा गुस्सा दिखाया, जिसे रेहान भी बखूबी समझ गया और मुस्कुराकर बोला, चल बता क्या सजा है मेरी, मुझे मेरी होने वाली भाभी की फोटो दिखा दीजिए। सृष्टि क्यूट सी शक्ल बनाकर और अपनी पलकों को फड़फड़ाते हुए उसको देखने लगी। उसकी अदा पर रेहान की मुस्कान बड़ी हो गई। उसने अपना फोन निकाला और गैलरी खोलकर स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। ये उस दिन की तस्वीर थी जब रश्मि हर बात से बेखबर उसकी गाड़ी में बड़े सुकून से सो रही थी। सृष्टि ने उसका फोन छीन लिया और स्क्रॉल करके देखने लगी। उसमें रश्मि की कई सारी तस्वीरें थी और सब में वो कुछ ना कुछ कर रही थी। तब रेहान ने चुपके से उसकी फोटो ली थी। सभी फोटो में वो प्यारी लग रही थी। सृष्टि ने सारी फोटो देखी, फिर लबों पर शरारती मुस्कान सजाते हुए रेहान को देखकर बोली, वाह भाई, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी फोटोग्राफी भी करते हैं आप, और आप तो प्यार में मजनू के साथ साथ स्टॉकर भी बन गए हैं, भाभी से छुप छुप कर उनकी तस्वीरें ली जाती हैं, अगर मैं ये बात उन्हें बता दूं तो। वो लबों पर शैतानी मुस्कान सजाए उसको देखने लगी। रेहान ने उसके हाथ से अपना फ़ोन खींच लिया और मुस्कुराकर बोला, जा बता दे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसे भी नहीं पड़ेगा। सृष्टि ने उसकी बात सुनकर बच्चों की तरह मुँह बना लिया तो रेहान हंस पड़ा, जिससे सृष्टि चिढ़ गई। उसने अपने दोनों गालों पर अपनी हथेली टिकाई और मुँह फुलाकर बैठ गई। रेहान लबों पर मुस्कान सजाए उसको देख रहा था। कुछ देर वो खामोशी से उसको देखता रहा, फिर उदास चेहरा बनाकर बोला, तो तुझे तेरी भाभी पसंद नहीं आई, मुझे तो लगा था कि तू ये गुड न्यूज़ सुनकर खुश होगी, पर यहाँ तो तू मुंह फुलाए बैठी है, अब तो लगता है कि मुझे कल तेरे बिना ही वहाँ जाना पड़ेगा। उसके इतना कहते ही सृष्टि जैसे अपनी सारी नाराजगी भूल गई और एकदम से बोली, क्यों क्यों, मैं भी चलूंगी आपके साथ, मुझे भी भाभी को देखना है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अगर आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए तो मैं यहाँ हंगामा मचा दूंगी। सृष्टि ने उसको धमकाया, जिस पर रेहान ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, तुझे कोई हंगामा मचाने की जरूरत नहीं, बस मुस्कुराकर दिखा दे, फिर मैं तुझे लेकर चलूंगा। सृष्टि उसकी बात सुनकर लबों पर बड़ी सी मुस्कान सजाकर उसको देखने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर वो भी खुश हो गया। कुछ देर बाद उसने उसे देखकर सवाल किया, तुझे तेरी भाभी पसंद आई, पहले आप मुझे भाभी का नाम बताइए, तब मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। रश्मि। रेहान ने जैसे ही नाम बताया सृष्टि ने तुरंत ही मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ भाभी बहुत प्यारी और सुंदर हैं, बिल्कुल आपके टक्कर की लग रही हैं। सच में टक्कर की ही हैं, रेहान ने मुस्कुराकर कहा, तो सृष्टि भी मुस्कुरा दी। रेहान जाकर अपना मुंह धोकर आया, फिर दोनों ने फिर से खाना शुरू किया। अब सृष्टि उससे उसके और रश्मि के बारे में पूछ रही थी और रेहान मुस्कुराकर उसके सब सवालों का जवाब दे रहा था। दोनों ने बातों के बीच डिनर किया, फिर सृष्टि बर्तन धोने चली गई, ऐसे ही काम डिवाइड किया हुआ था उन्होंने। सृष्टि को खाना बनाना पसंद नहीं था और ना ही उसको आता था, इसीलिए रेहान खाना बनाता था और सृष्टि बर्तन धोती थी। घर के बाकी कामों के लिए दिन में मेड आती थी। रेहान अपने कमरे में चला आया और जैसे ही फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया, उसका फोन बज उठा जो कि बेड पर रखा हुआ था। रेहान ने जैसे ही स्क्रीन पर चमकते नाम को देखा, उसके लबों पर बड़ी सी स्माइल फैल गई। फोन पर नकचिड़ी बिल्ली शो हो रहा था, जो रश्मि का ही नाम रखा था उसने।